الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے اس طرح سے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس رمضان کے مبارک مہینے کے قریب آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ بھی ہمیں نصیب کرے, کیونکہ انسان ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دینے والا ہے ہماری بخشش کا, ہماری دعاؤں کی قبولیت کا, ہمیں ہمارے لیے اجر کمانے کا ایک اور موقع آنے والا ہے. رمضان کا جو مہینہ ہے بعض لوگوں کے لیے تو بوجھ لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ رمضان آیا تو ہائے مشکل پڑ جائے گی, کھانا پینا بند ہو جائے گا, سوشلائزنگ بند ہو جائے گی, پارٹیز بند ہو جائیں گی تو کیا ہوگا ہمارا, اور بڑی مشکل لگتی ہے کہ روزے, گرمی کے روزے اور ایسے. بعض لوگوں کے لیے یہ مہینہ صرف افطاریوں کا مہینہ ہوتا ہے, ان کو یہ مزہ آتا ہے کہ بس افطاریاں کھائیں گے, چٹپٹے کھانے ہوں گے اور بس. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں رمضان کے مہینے کے ذریعے, جو زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں ایک رمضان کے ذریعے, جو اپنی بخشش کروا لیتے ہیں ایک رمضان کے ذریعے, اور جو اللہ تعالیٰ کا قرب پا لیتے ہیں رمضان کے ذریعے. تو یہ مہینہ جس کو آپ بہت سنتے ہیں, ہر جگہ سنیں گے بڑا برکتوں والا مہینہ, بڑا برکتوں والا مہینہ. چلو برکتوں والا مہینہ, واٹ ڈز دیٹ مین, برکت والا مہینہ ہے تو کیا مطلب, کیا برکت ہے اس میں ہمارے لیے, ہم کیا پائیں گے اس میں, ہمیں وہ چیز اچھی لگتی ہے جس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے. رمضان میں ہمیں کیا فائدہ نظر آتا ہے اصل میں؟ یہ مہینہ اجر بہت زیادہ ہوتا ہے, بالکل.
اور کریں گے کچھ ایفرٹ کریں گے اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے تو ملے گا,
بالکل وہ بھی صحیح ہے. صرف یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اجر پانا, اس کے تو اتنے زیادہ فضائل ہیں. برکت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر, بہت زیادہ خیر. یہ جو انہوں نے بتایا یہ ایک اجر ہے اس کا, اس کے علاوہ یہ بھرا پڑا ہے خیر سے, بھرا پڑا ہے فل. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمیں عطا کر کے ہمیں اتنا بڑا چانس دے دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پھر وہاں سے شروع کر لیں کہ جہاں پہ ہم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گئے. یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں پاک صاف کر سکتا ہے, یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہماری جتنی پرانی دعائیں تھیں, ہم سوچتے تھے یہ دعا کروں یہ دعا کروں یہ دعا میری قبول ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اسلاف جو تھے نا اپنی دعاؤں کو سنبھال کے رکھتے تھے رمضان کے لیے, کہ رمضان آئے گا تو یہ یہ دعائیں ہم نے رمضان میں مانگنی ہیں. اتنا بہترین مہینہ ہے جس کے لیے نہ صرف زمین پہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمتیں اتارتا ہے بلکہ آسمانوں پہ اس کی تیاری ہوتی ہے. آسمانوں پہ کیا تیاری ہوتی ہے؟ کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ یہ لوگ جو جی کتنے ہیں؟ آٹھ دروازے. اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ سات دروازے. تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ جنت کے لیے زیادہ کوشش کر سکیں, لوگ جنت کو پا سکیں. کوئی چیز کا گیٹ کھول دیا جائے تو مطلب کیا ہوگا؟ آپ کے یہ کمپلیکس کا گیٹ کھول دیا جائے اس کا مطلب سب آ جاؤ, آ جاؤ, سب ویلکم ہو. اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی یہاں نہیں جائے, اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان, اتنا زیادہ, جو رب پہلے ہی رحمان اور رحیم ہے, اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے, تو ایک ایک نفل کا اجر بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے, اور فرضوں کا تو 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور شیاطین کو کیوں قید کیا جاتا ہے؟ کہ آپ کو بہکائیں نہیں, آپ کو وسوسے نہیں ڈالیں. جبھی تو آپ دیکھیں کہ رمضان میں ایک عام بندہ بھی جو سارا سال شاید مسجد نہ جاتا ہو وہ بھی مسجد کا رخ کرنے لگتا ہے. وہ لوگ جو کبھی قرآن نہیں کھولتے وہ بھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں. وہ لوگ جو شاید 5 وقت کی نماز بھی نہیں پہلے پڑھتے تھے अब वो भी कोशिश करते हैं पांच वक्त की नमाज हो जाए, क्यों? शयातीन बंद है, कोई वसवसा डालने वाले, अल्लाह ताला ने हर तरह से ये चाहा है कि इंसान के लिए फैसिलिटेट करे वो नेकी करना, नेकी को आसान कर दे। ये इतनी खैर कसीर का महीना है कि अगर आपको इसकी खैर पता चल जाए, आपका दिल करे सारा साल ही रमज़ान रहे, या अल्लाह कभी ये महीना ख़त्म ही ना हो, ये बोझ ना लगे, आप तो इसको वेलकम करें, क्योंकि इसकी वजह से हम वो दर्जे पा सकते हैं जो आम दिनों में इतनी नेकी भी करेंगे तो वो नहीं मिल सकते। पूरे साल में कोई ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप इतनी नेकी करें तो आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल जाए। पूरे साल में इतनी रहमतें नहीं बरसती जितनी कि इस महीने में बरसती। और इसकी तैयारी ये नहीं कि पहला रमज़ान आए तब से शुरू होती है। हमारे असलाफ तो 6 महीने पहले से दुआएं करने लगते थे, या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा देना, अल्लाह हमें रमज़ान खैर से अता कर देना। हम भी अपने लिए दुआएं किया करें कि अल्लाह रमज़ान तक पहुंचा देना, अभी गो के 1 महीना बाकी है। लेकिन कोई पता तो नहीं ना कि इंसान वहां तक पहुंच भी पाता है कि नहीं, और कौन पहुँच पाता है और कौन नहीं। अब कई लोग हमारे साथ पिछले रमज़ान में थे, वो इस रमज़ान में नहीं है, उनको देखना नहीं नसीब हुआ, तो हम नहीं जानते कि कौन होगा या कौन नहीं। लेकिन ये दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह रमज़ान तक खैर से पहुंचा देना। तो वो जो हमारे असलाफ थे उसकी तैयारी शाबान के महीने से शुरू कर देते थे, जैसे कल शाबान इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। तो शाबान को क्या महीना वो तसव्वुर करते थे, हम तो अपना कुरान खोलते हैं ना रमज़ान में, वो क्या करते थे, शाबान के महीने को कहते थे ये वो महीना है जो कुरान के कुर्रा का महीना है, यानी कुरान की तिलावत करने वालों का महीना। एक ताबई थे, वो अपनी दुकान बंद कर देते थे शाबान में, कहते थे कि अब कुरान पाक की तिलावत का महीना। क्यों? इसलिए क्योंकि रमज़ान, जैसे आपको पता है रमज़ान में तो हम करते ही हैं, लेकिन पहले से जब आपने शुरू किया हो तो आप उस फॉर्म में आ जाते हैं। क्यों? जब एक दौड़ लगाने लगते हैं एथलीट्स तो उनको उससे पहले क्या कराया जाता है, एकदम थोड़ी है बिस्तर से उठा के तो खड़ा कर दे तो दौड़ना शुरू कर दो, क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। ये वार्म अप का महीना है, ये आप वार्म अप कर लें। ये ना हो कि पहला रोज़ा रखें और आज तो मैं सारा दिन बिस्तर से ही नहीं उठ सकी क्योंकि मेरे सर में ही दर्द रहा, चाय जो नहीं मिली। तो थोड़ा सा इस महीने से रोज़ों को चखना शुरू करें, इस महीने से आप कुरान पाक की तिलावत शुरू करें। फिर लोग कहते हैं रमज़ान में हमारा कुरान ही मुकम्मल नहीं हुआ। इसलिए नहीं मुकम्मल हुआ कि आप अगर पहले से शुरू करते, आपको पता है मेरी कितनी स्पीड है, या अगर आपकी स्पीड तेज़ भी है तब भी आप ज़्यादा अजर पा सकते हैं, क्योंकि अभी से शुरू किया होगा तो एक आपका मुकम्मल हो जाए रमज़ान के शुरू में, एक रमज़ान के एंड तक चलो, और उससे भी ज़्यादा कोई कर सके तो और भी अच्छी बात है। ये वो महीना है कि इसके बारे में हमारे असलाफ कहते थे कि आपका रमज़ान और गैर रमज़ान बराबर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम गैर रमज़ान में इसी तरह रमज़ान के अंदर हों, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे चढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, फिर दूसरा स्टेप लिया आमीन, फिर तीसरा स्टेप लिया आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो पहले कभी ऐसे नहीं करते थे, आज क्या बात हुई कि आपने आमीन बोला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जिब्राईल तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने मुझे 3 बातें कहीं जिन पर मैंने आमीन कहा। पहली बात क्या उन्होंने कही कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने और आपके ऊपर दुरूद ना भेजे वो हलाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे होंठ हिलने चाहिए। और दूसरे स्टेप पे जब गए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने माँ बाप को देखे बुढ़ापे में और उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए वो हलाक हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। और तीसरे स्टेप पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके वो हलाक हो गया। एक दुआएं थी जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। किसकी दुआ है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम की। आमीन कहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये नहीं है कि इट्स एन ऑप्शन, ये नहीं कि रमज़ान आया ओके मैं करूँ कि नहीं करूँ, इट्स ओके, कौन सा कोई ज़रूरी है। अगर मेरी और आपकी बख्शिश ना हुई रमज़ान में, गॉन, हम हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। क्योंकि ये दुआ जिब्राईल अलैहिस्सलाम की और आमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो कोई बच नहीं सकता। फिर इतना ज़रूरी है ये महीना, इसमें ऑप्शनल नहीं है बख्शिश करवाना, इसमें ज़रूरी है। ये वो महीना है जिसकी हर रात में अल्लाह ताला जहन्नुम से लोगों को आज़ाद कर देता। वो लोग जिनके लिए जहन्नुम लिख दी गई थी उनके लिए जहन्नुम से आज़ादी हर रात, एवरी नाइट अल्लाह ताला की रहमत इतनी ज़्यादा होती है। तो किसको नहीं जहन्नुम से आज़ादी चाहिए, और जिसको एक दफ़ा आज़ादी मिल गई वो आज़ाद है, फिर दोबारा अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में नहीं डालेगा। तो कितनी मुबारक ये रातें हैं और कितने मुबारक ये दिन हैं कि दिन का रोज़ा और रात में कुरान, तरावी में आप कुरान ही पढ़ते हैं। तो दिन में आपने रोज़ा रखा हुआ, रात में आप कुरान के साथ तरावी पढ़ रहे हैं, नमाज़ों में भी कुरान, वैसे भी कुरान की तिलावत। और यही वो महीना है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे किस से, दो चीज़ों के साथ, ईमान और एहतसाब, यानी सवाब की नीयत से। इसलिए नहीं कि मैं स्लिम हो जाऊँ, इसलिए नहीं मेरा वेट थोड़ा लूज़ हो जाए, इसलिए नहीं कि सारे ही रख रहे हैं, इसलिए कि ऐ अल्लाह मुझे अजर देना इसका। तो क्या फरमाया आपने, कि उसके तमाम पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता। और जिसने इन रातों में क़याम किया इन्हीं दो शराइत के साथ, ईमान हो और सवाब की नीयत से। इसलिए मस्जिद जाके आप तरावी नहीं पढ़ रहे क्योंकि सारे ही जाते हैं, चलो अब तो जाना चाहिए। इसलिए नहीं पढ़ रहे कि चलो वहाँ पे सहेलियों से मुलाकात हो जाएगी और गपशप होगी। इसलिए नहीं कि वहाँ पे वो पकौड़े और चाय देते हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला अजर देगा मुझे। तो जिसने क़याम किया, चाहे घर में करें चाहे मस्जिद में करें, लेकिन जिसने इन दो शराइत के साथ क़याम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाह माफ़ कर देता। कोई, मैं एक बशारत आपको सुनाऊँ, इतनी बशारतें हैं इस महीने की, इतनी खुशखबरियाँ हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है और दिल करता है हाय ये महीना जल्दी से आ जाए, हाय अल्लाह इस महीने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, मेरे सब आफियत रहे, क्योंकि मुझे ये महीना इतना प्यारा है। वो इस महीने में मैं जहन्नुम से आज़ादी पा सकती हूँ, मेरे गुनाह बख्शे जा सकते हैं। और तो और सोचें कि जो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला ने उसको क्या खुशखबरी दी। ये नहीं फरमाया उसका अजर इतना है और इतना है और इतना है, ये फरमाया कि रोज़ेदार का जो अजर है वो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे पास आएगा तो मैं उसको दूंगा वो अजर। दुनिया में नहीं बताया, दैट्स अ सरप्राइज, दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू, एक सरप्राइज गिफ्ट, एक सरप्राइज, एक प्राइज आपको मिलेगा वहाँ पे। कोई बादशाह कह दे दुनिया में कि आप आएं और फिर आप देखें कि हम आपको कैसे नवाजते, अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? जितना बड़ा बादशाह उतनी बड़ी होगी ना, कि ये कोई छोटे मोटे बंदा बेचारा फ़कीर सा, वो आपको क्या देगा? लेकिन जितना बड़ा बादशाह होगा आपको होगा यहाँ से तो बहुत कुछ मिलेगा। और रब्बे कायनात फरमा दे कि जब मेरे पास रोज़ेदार आएगा तो जो मैं उसको अता करूँगा उससे उसका दिल खुश हो जाएगा। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त, जब सारा दिन उसकी भूख प्यास से रहता है तो इफ्तारी करता है, ठंडक पड़ जाती है, और हदीस में आता है दूसरा जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला जो उसको नवाजेगा ना उसका दिल खुश हो जाएगा उससे, यानी अल्लाह ताला आपको खुश कर देगा। जिसके हाथ में हर चीज़ है वो खुश कर दे, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो अशकूर है। वो हमारी तरह नहीं है कि किसी को देना हो ना कोई चीज़ तो फिर हम सस्ता देखते हैं, अच्छा क्या दूँ, अच्छा कोई छोटी ही देती हूँ। जब कोई चैरिटी डोनेशन के लिए बात आए तो कहते हैं छोटा ही नोट निकालूँ, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, वो गनी है, बेनियाज, वो देने से चूकता नहीं, वो बखील नहीं है। देखो कब से कायनात चल रही है ना, उस वक़्त से वो दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है, कुछ लेता नहीं, उसको वो, उसको ज़रूरत नहीं किसी की, वो हमारी तरह मोहताज नहीं है, हम हैं मोहताज। तो वो रब जब देगा तो अंदाज़ा करें कि उसकी देन कितनी होगी। फिर जिसको परवाह नहीं है कमी की कि कम हो जाएंगे मेरे ख़जाने, वो सारी कायनात को भी, यानी हदीस में आता है कि پہلے انسان سے آخر انسان تک، اول سے آخر تک، جن و انس، مرد عورتیں، جوان بوڑھے بچے، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر ایک کی مانگ کو بھی پورا کر دوں نا، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی سوائے اتنی جتنی کہ آپ انگلی سمندر میں ڈالیں اور نکالیں، اتنا سا پانی آپ کی انگلی پہ لگانا، اتنی سی بس، سب کو دے کے آپ نے جو مانگنا ہے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنی، تو پھر اس کو کیا پرواہ ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اس کا ایک نام ہے الشکور، الشکور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قدردان، اس میں مبالغہ ہے، بہت قدر کرنے والا، یعنی بندوں کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ. روزہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام جس رب نے سارا سال کھلایا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ بس ڈان ٹو ڈس طلوع سے غروب تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے پر بڑا ظلم ہو گیا ہے، ہم کیا کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جتنی اس نے نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور اس میں بھی ہماری اپنی بھلائی ہے. دیکھیں ایون یہ، ہم حالانکہ اس کے لیے نہیں روزہ رکھتے، لیکن جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا کتنا فائدہ ہے آپ کو، اب وہ سائنس کہنے شروع ہو گئے، تو ہم سارے لگ پڑے کہ اچھا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھوا کے، دیکھو ہمارے جسم کی بھی ہیلتھ اس میں ہے، ہمارا جسم بھی اس سے ہیلدی ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس کے لیے نہیں رکھتے، ہم اس نیت سے نہیں رکھیں گے کہ ہاں میرا جسم ہیلدی ہو اس لیے میں کروں گی، نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں. تو حالانکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، جو رب آپ کو سارا سال کھلاتا ہے وہ کیا ایک مہینے نہیں کھلائے گا، بلکہ اس مہینے ہم اور ہی زیادہ کھاتے ہیں، ہے نا، تو بعض لوگوں کے وہ ویٹ اور بڑھ جاتے ہیں نا، تو اس کو کوئی کمی تھوڑی ہے کہ اس نے آپ کو، آپ نہ کھائیں گے تو اس کے خزانے بڑھ جائیں گے، ایسی بات نہیں، بس وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے. روزہ اصل میں انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. دیکھیں نا، آپ سارا دن ایک ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں، ہر ایک دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے سارا سال ہمیں نہ پتا ہو کہ فجر کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے اور مغرب کتنے بجے ہوتی ہے، لیکن جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے سب کو ازبر یاد ہوتا ہے کہ اتنے بجے افطاری ہے اور روزہ اتنے بجے بند ہونا ہے. کیوں، 5 منٹ بعد بند کر لیں یا 5 منٹ پہلے کھول لیں؟ کیوں نہیں کھولتے، کیوں نہیں کھولتے؟ اللہ کا حکم نہیں ہے. باقی زندگی میں کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے، باقی زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے میں کیوں کر رہی ہوں، اور اس میں اللہ کا حکم ہے میں کیوں نہیں کر رہی. یہ روزہ آپ کو سبق دیتا ہے، یہ روزہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جیسے تم رمضان میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہو نا، ایسے ساری زندگی ہونی چاہیے. یہ آپ کو ایک طرح سے اس چیز کی ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا ہے، جو اس کا حکم ہے اس کو اس طرح سے فالو کرنا ہے جیسے آپ کو کوئی کہہ دے 2 منٹ پہلے کھول لیں کوئی بات نہیں، تو آپ کہیں گی نہیں نہیں نہیں، اس طرح سے ہر چیز میں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو کہے یہ کام کر لو کوئی بات نہیں، تو آپ کہیں نہیں 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 میرے رب کا حکم نہیں ہے. یہ آپ کو ٹریننگ روزہ دیتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی اللہ تعالیٰ الشکور ہے، قدردان ہے، پھر وہ اتنی قدردانی کرتا ہے کہ آپ کے کیا یہ روزے، کیا ان کی حیثیت ہمارے روزوں کی، پتہ نہیں کیسے ہیں ہمارے روزے، لیکن اس کے اوپر اتنا نوازتا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے میں تمہیں خوش کر دوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا میں تمہیں کیا کیا دیتا ہوں. یعنی انسان کو رب خوش کر دے، یہ اتنی سی چیز کے پیچھے، اس کے گناہ بخش دے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا یہ. اس کی میں مثال ہمیشہ ایسے دیتی ہوں کہ جیسے آپ کا چھوٹا سا بچہ آپ کے پاس کچھ پینسل پیپر پہ کچھ لکیریں کھینچ کے لے آتا ہے، 3-4 سال کا بچہ، اور آپ اس کو دیکھ کے اتنا اپریشیٹ کرتی ہیں اور اتنا اس کو گفٹ دیتی ہیں، اس نے کیا ڈرا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس چھوٹی سی لکیریں ہیں جو ڈزنٹ میک اینی سینس، لیکن آپ को इतना प्यार आता है, इसने कोशिश की है ना, इसने ला के मुझे प्यार से दिया। अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखता है कि आप कितनी कोशिश करके दिखा रहे हैं, आप कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं। यकीन जाने हमारी ये भागें दौड़े ही हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। अल्लाह ताला ये देख रहा है, वह अल्लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए उतना ही है जितनी वो मेहनत कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने आपकी कोशिशें देखनी है, उसके तो इतने फरिश्ते हैं जो उसकी इबादत में लगे हुए, उसको मेरी और आपकी इबादत की थोड़ा ही ज़रूरत है। फरिश्ते ना खाते ना पीते, बस सारा वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। जो और काम करते हैं ना फरिश्ते, उनकी भी हर वक्त ज़ुबान पे तस्बीह जारी रहती है। और बाकी तो आपको पता है, बैतुल मामूर पे इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं, एक दफ़ा तवाफ कर ले एक फरिश्ता तो दोबारा उसकी बारी नहीं आती। आसमान चिरचिरा रहा है, इतने फरिश्ते हैं, कोई रुकू में है, कोई सज्दे में है, कोई क़याम में है। मेरी और आपकी इबादत क्या चीज़ है? लेकिन ये वो लकीरें हैं जो एक बच्चा लेकर आता है और शौक से देता है। तो माँ कहती है शाबाश कितना अच्छा, और उसको रिवॉर्ड करती है। अल्लाह ताला का ये एक तरीका है हमें नवाजने का। वो क्योंकि कदरदान है, वो छोटे छोटे कामों की भी कदरदानी करता है। आप दुनिया में किसी के लिए कुछ करें, हो सकता है वो आपकी कभी कदरदानी ना करें। और अक्सर ऐसा होता है कि पलट के कोई पूछता भी नहीं है, फिर कभी शुक्रिया भी नहीं करता। आप अपनी जान मार देते हैं। आप औलाद ही देख लें, इंसान बेलॉस होके कितना कुछ करता है, लेकिन फिर एक दिन औलाद कहती है आपने हमारे लिए क्या किया। तो इस दुनिया में कदरदानी नहीं मिलती। उसके लिए करो जो आपका कदरदान है, उसके लिए हम करते नहीं। सारी दुनिया के लिए जान मारते फिरते हैं, इसके लिए मर मिट रहे हैं, कभी ससुराल के लिए, कभी दोस्तों के लिए, कभी औलाद के लिए, कभी किसी के लिए। वो पूछते तक नहीं हमें, या कल को वही हमसे नाराज़ हो जाते हैं या कोई ताना दे देते हैं, हम कहते हैं हाय हमने तो इसके लिए इतना किया। आपने उनके लिए किया जो कदरदान नहीं थे, उसके लिए करके देखते जो कदरदान है। तब आपको पता चलता कि वो कैसे वैल्यू करता है आपकी छोटी छोटी एफर्ट्स को भी, कि इंसान क़यामत के दिन देखेगा तो सोचेगा ला इसके ऊपर भी अजर, एक मुस्कुराहट पे भी अजर था, एक मेरा डॉलर देने के ऊपर भी। जो जैसे हदीस में आता ना कि एक इंसान खजूर भी देता है तो अल्लाह ताला उसको पाल के उस दिन कैसे कर देगा, ओहद पहाड़ के बराबर। कौन आपको इतना अजर दे सकता है? ओहद पहाड़ के बराबर एक खजूर का अजर, एक खजूर की क्या हैसियत है? इतना अल्लाह ताला नवाजने वाला है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। वो इतना नवाजता है कि बंदा, इंसान कहता है कि मेरी झोली उतनी बड़ी नहीं, अल्लाह जितना तू नवाजने वाला, इतना ज़्यादा वो अता करने वाला है। तो उससे मांगे, ये दुआओं की कबूलियत का महीना और ये अल्लाह ताला से मांगने का महीना, जो हमारी हाजात हमने कब से रखी हुई, जो हमने सोचा हुआ था कि हम इस महीने में मांगेंगे, वो सब जो आपकी लिस्ट है वो सब तैयार कर लें इस महीने के लिए, ख़ास तौर पे इफ्तार के वक्त के लिए। इफ्तार के वक्त मैंने अल्लाह ताला से बहुत दुआएं मांगनी हैं। और देखें अल्लाह ताला की कदरदानी की आपको एक बात बताऊं कि साद बिन मुआज जो थे, अगर आप लोगों में से जिन्होंने सीरत पढ़ी हुई है, साद बिन मुआज सहाबी रसूल, मदीना में औस के सरदार थे, उनके ईमान लाने की वजह से उनका पूरा कबीला ईमान ले आया। जंगे अहज़ाब में उनको एक तीर लगा और ज़ख्मी हो गए, और कुछ दिन बाद वो शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके जनाजे में चल रहे थे ना, तो टिपी टो चल रहे थे। हाँ, तो सहाबा ने पूछा कि क्यों आप ऐसे चल रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साद के जनाजे में इतने फरिश्ते शरीक हुए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। और साद वो सहाबी रसूल हैं कि जिनकी शहादत के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श झूम उठा। अल्लाह ताला इतना कदरदान है, अल्लाह खुश उनसे, तो अल्लाह ताला का अर्श खुश हो गया कि ये सहाबी आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करें जिनके लिए अल्लाह ताला का अर्श झूम उठे कि ये बंदा अल्लाह का आ रहा है। ऐसे ऐसे लोग थे, अल्लाह ताला की ऐसी कदरदानी होती है कि अल्लाह ताला आपकी छोटी छोटी एफर्ट को, शायद हम भूल जाएं कि हमने इस वक्त सुभान अल्लाह बोला, हम शायद भूल जाएं कि हम वहाँ गए थे, हमने उसकी हेल्प की, हम शायद भूल भी जाएं कि हमने मस्जिद में शायद $20 डाले थे, मुझे नहीं याद कब डाले। अल्लाह ताला नहीं भूलता, वो कभी किसी का रखता नहीं है, वो इस दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी नवाजेगा। और इस दुनिया में तो हर चीज़ लिमिटेड है, यहाँ पे तो जो चीज़ मिलेगी भी वो भी लिमिटेड होगी, लेकिन जो आखिरत का अजर है वो अनलिमिटेड है, वो जन्नत की फॉर्म में है जिसने कभी ख़त्म नहीं होना। जन्नत के जब दरवाजे अल्लाह ताला ने खोल दिए तो इसीलिए खोले हैं कि आप सब जन्नत के सौदागर बने, आप सब जन्नत को हासिल कर सकें, आप इसके लिए दौड़ लगाएं, इसके लिए मेहनत करें, इसके लिए कोशिश करें। तो इस महीने में अपनी मसरूफियत को लिमिटेड कर देना, सारी बेकार चीज़ें, सारी वो चीज़ें, मैं हमेशा कहती हूँ वो चीज़ें जो आप रमज़ान के बाद भी कर सकते हैं, अलमारियाँ साफ़ करने शुरू कर देना, चलो किचन में पेंट्री सफाई शुरू कर दी, चलो वहाँ चले गए उससे मिलने के लिए, क्या ज़रूरत है, रमज़ान के बाद कर लें, ये कहीं भागे नहीं जा रहे आपके घर। इसी तरह कुछ शॉपिंग शुरू कर दी, ईद की शॉपिंग, भाई अभी से ईद की शॉपिंग कर लो आप, रमज़ान को वेस्ट ना करो। इसकी ऐसे मिसाल समझे, आपका बेटा कहीं दूर पढ़ने गया हुआ, साल भर से आपने उसकी शक्ल नहीं देखी, अब वो फ़ोन करके कहता है कि अम्मा मैं एक महीने के लिए आ रहा हूँ आपके पास, तो अब आप क्या कहेंगे, कोई पार्टी रखेंगी, कहीं जाएंगी, आप कहेंगे मेरा बेटा आ रहा है, एक साल बाद मैं उससे मिलूँगी, वो मेरे लिए सिर्फ आ रहा है, मैं नहीं आ सकती अभी, मैं नहीं आपसे मिल सकती, सारे फालतू काम पीछे कर देंगे, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये रमज़ान एक मेहमान है, इसे हमेशा थोड़ी रहना होता है, गिनती के दिन है अल्लाह ताला ने फरमाया, गिनती के दिन ये महीना रुखसत हो जाएगा, फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले, उसको ऐसे ही गुजारें कि पता नहीं, हो सकता है आखिरी हो, हमें क्या पता। जितनी आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अमवात हो रही हैं, लोग कैसे जा रहे हैं, ना जवानों का पता ना बूढ़ों का, तो उसमें हम सोचते हैं कि हमारी गारंटी है कि हम अगला भी रमज़ान देखें, पता नहीं ये वाला भी देखना है कि नहीं। हसन बसरी एक दफ़ा जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि कुछ लड़के खड़े हुए हंस बोल रहे हैं, जैसे लोग खड़े होते हैं ऐसे गपशप कर रहे हैं, हंस रहे हैं बोल रहे हैं, तो फरमाया तुम लोग कैसे हंस सकते हो, ये रमज़ान का महीना है, ये तो एक दौड़ है जो लग चुकी है, और अगर तुम इसमें जीत गए हो तब खड़े होकर हंस बोल सकते हो, और अगर इसमें हार गए हो तो फिर तो हंसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम सोचें कि ये दौड़ का महीना है, हम इसके अंदर फालतू इधर उधर जो खड़े हुए हैं, इधर फ़ोनों पे इतनी इतनी लंबी गुफ्तगू, फेसबुक पे बैठे हुए हैं, उस पे बैठे हुए हैं, इधर टाइम वेस्ट उधर टाइम वेस्ट, कई लोग तो वो ड्रामे लगा लेते हैं, वो कहते हैं रोज़ा भी तो गुजारना है ना, तो वो एक दो घंटे का वो ड्रामा चल रहा है अब, तो चलो टाइम पास करना है, आप टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम आपको पास कर रहा है, ये दोबारा वक्त नहीं आता। तो रोज़ा इसमें नहीं गुजारना कि बस सोए रहें, सुबह से सोए में, अब जोहर के बाद उठे, फिर जोहर पड़ी फिर सो गए, अब इफ्तारी के टाइम उठेंगे, ऐसे नहीं। और ना ही ये करना कि स्क्रीनों के आगे बैठ जाए। ये किस चीज़ का महीना है, शहरु रमदान लल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, ये कुरान का महीना है, इसी की वजह से यही महीना था, इसी की वजह से हम मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें कुरान का आगाज़ हुआ, इक़रा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खलक, ये कब उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबुव्वत कब मिली, रमज़ान के महीने में, इसीलिए तो इसमें लैलतुल क़द्र है ना, ये वो प्यारा महीना आ रहा है जिसकी वजह से आज हमें कुरान की नेमत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली। ये वो महीना है जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, अल्लाह के फ़रिश्ते, इसमें एक ऐसी रात है जो 83 ईयर्स की इबादत से ज़्यादा बेहतर रात है, कौन सी और रात पूरे साल में आपको ऐसी मिलेगी, वो इस महीने में। तो इस महीने को समझ लें मेहनत का महीना, बेकार बैठने का नहीं है कि चलो किचन बंद हुआ तो अब और फालतू काम करें, नहीं, ये मेहनत का महीना, ये कोशिश का महीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कमर कस लेते थे, इतना ज़्यादा नेकियों के अंदर ऐसे होते थे कि जैसे तेज़ आंधी है, तेज़ हवा देखें जब चलती है तो हर जगह पहुंच जाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर में इतना बढ़ जाते थे, जिब्राईल अलैहि सलाम के साथ दौर करते थे कुरान का, हालांकि कुरान तो आप पे उतरा था। तो कुरान करीम की तिलावत जितनी आप कर सकते हैं, कोई अपना लम्हा ज़ाया ना करें। अगर गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं आपको हिफ्ज़ है तो अपना हिफ्ज़ की दोहराई कर लें, हिफ्ज़ नहीं है तो ज़िक्र अज़कार कर लें, वरना तौबा इस्तग़फ़ार करें। क्योंकि क्या ये महीना है? इस्तग़फ़ार का महीना, बख्शिश का महीना, कि अल्लाह ताला बख्शने पे तैयार है, अल्लाह ताला के क़ुर्ब का महीना। जैसे हम है ना बच्चे को हम एक कैंडी दिखाते हैं किस लिए? कि वो हमारे पास आ जाए, उस तरह से उसको बुलाते हैं। अल्लाह ताला ने ये छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं कि आप इस तरह उसके करीब आ जाएं, वरना शायद सारा साल जिस तरह हम गुजारते हैं गफलतों के साथ, कभी इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे होते, इस तरह ही रमज़ान भी गुजर जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने ये महीना ला के समझ ले बंदे को अपने से करीब कर लिया कि आ जा मेरे बंदे, अब मेरे करीब आ जा। बहुत टाइम आप अल्लाह ताला से दूर रहते हैं, अब क्या टाइम है? अल्लाह से करीब आने का टाइम, अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है ये रमज़ान का महीना। और रमदा, रमज़ान रमदा से है, रौ मीम दौद, इसका मतलब होता है जला देना। ये क्या किस चीज़ को जलाता है? इंसान के गुनाहों को जला देता है और उसको पाक साफ कर देता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो रमज़ान का महीना पाते हैं और इससे जब निकलते हैं तो पाक साफ होते हैं गुनाहों से, जिनके लिए जहन्नुम से आज़ादी लिख दी गई होती है। इसीलिए फिर हम ईद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि हमारी बख्शिश हो गई, इसलिए कि हमने इसमें मेहनत की, इससे कि हमने इसमें नेकियां कमाई, अजर कमाया, सवाब कमाया। तो ये वो महीना, ये तो महीना इंसान की तमन्ना होनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में बार बार आए और मैं इससे फ़ायदा उठा सकूं। कुछ लोग रोज़ा नहीं रख सकते, वो फ़िदिया अदा करें, पहले से फ़िदिया अदा कर दें ताकि उनको ये तसल्ली हो जाए कि हमारा जो हमने रोज़े नहीं रखने, कोई किसी का कोई उज़र है तो। वरना जो हेल्दी लोग हैं वो इसको अपने लिए खुशकिस्मती समझें कि हम रोज़ा रख सकते हैं। जिन दिनों में आप रोज़ा नहीं रख सकते उन दिनों के अंदर भी कुरान पाक का तर्जुमा पढ़िए, तफसीर पढ़िए, ज़िक्र अज़कार कीजिए, तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, दुआएँ कीजिए। दुआ मुख़्तल इबादत है, इबादत का मगज़ है, दुआ भी इबादत है। हमने तो दुआएं भी छोड़ दी, हमें दुआएं अब करनी ही नहीं आती। कहते कोई ये आके हमारे लिए दुआ कर दे, आप कर दें, आप कर दें, आप कर दें, हर एक को कह देंगे आप हमारे दुआ में याद रखें बस। वो हमने तो अपना बोझ उठाया किसी के साथ डाल दिया, क्यों हमारे पास कहाँ टाइम है दुआएं करने का, अब तो ये हाल हो गया। तो दुआओं की कसरत करें, क्या चीज़ नहीं हमें चाहिए अल्लाह से? हर चीज़ तो चाहिए, हम हर एक चीज़ के मोहताज हैं। तो दुआएँ कसरत से करें। हम सोचते हैं कि बस अब हमारी रोज़े से छुट्टी हुई तो बस बिल्कुल आराम से हम बैठ गए, छुट्टी हो गई हर चीज़ से। नहीं, उतने दिन भी हमने ज़ाया नहीं करने, उतने दिन में भी नेकी कमानी है। सिर्फ रोज़ा नमाज की छुट्टी हो गई, बाकी काम तो करें आप, तो इन दिनों को भी ज़ाया नहीं करना। और रातों को क़याम में ज़रूर गुजारें। क़याम क्या है कि आप इशा से लेकर सहरी के वक्त तक किसी वक्त भी क़याम कर सकते हैं। आप कुरान करीम को पकड़ के, अगर आपको याद नहीं है पकड़ के और फिर उसके ज़रिए क़याम कर सकते हैं, उसमें से आप पढ़ें जितना आप पढ़ सकते हैं। और ये कोशिश करें कि वो वक्त जो कि दुआओं की कबूलियत का एक तहाई रात जो आखिरी रह जाती, 1/3 नाइट जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, उस वक्त में ज़रूर आप उठें। और वो वक्त कौन सा है? जो सहरी का टाइम के इर्द गिर्द का टाइम। सहरी का टाइम जो है, अगर आपने 5 बजे उठना है तो 4:30 उठ जाए और आधा घंटा उस वक़्त दुआएं कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए। तो ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये उस वक़्त ही होता है। इसके अंदर मैं आपको हर दिन बताऊंगी कि आज आपने क्या करना है, आज आप कौन कौन सी दुआएं मांग सकते हैं, आपकी मोटिवेशन रहे। क्योंकि ये मैं आज लेक्चर देके जा रही हूँ ना, एक महीने तक शायद ही किसी को याद रहे कि कहा क्या था वहाँ पर, ऐसा ही है, हम भूल जाते हैं ना। वो जो आज जज्बा है, अगर कल रमज़ान शुरू हो जाए तो शायद बहुत जज्बे के साथ हम स्टार्ट करें, लेकिन जब एक महीना गुजरेगा ना, हमें शायद याद भी ना रहे कि क्या है। तो हमने क्या करना है कि ये एक महीने बाद जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हो उसमें शिरकत करें, ताकि एवरी डे रिमाइंडर्स मिले, रिमाइंडर्स मिले, याद दहानी हो, फिर हमारा जज्बा दोबारा, इतने ही जोश हमारे अंदर हो, फिर जज्बा आए, फिर हम नेकी करें। वरना क्या होता है, हम कुछ दिन बाद बैठ जाते हैं। क्योंकि एक हमारा दुश्मन बाहर है शैतान, और एक दुश्मन हमारे अंदर हमारा नफ्स बैठा। इस नफ्स को किस चीज़ में मज़ा आता है? सोने में, खाने में, पीने में, बस आराम करने में। ये मेहनत नहीं करना चाहता, इसको मेहनत का आदि बनाना पड़ता है, इसके साथ लड़ना पड़ता है। इसीलिए बहुत से लोग पूछे ना, शैतान तो बंद है फिर हम क्यों गुनाह करते या क्यों गुनाह रहे। शैतान तो बंद है, तुम्हारा नफ्स तो बंद नहीं है ना। जिसको ट्रेनिंग दी शैतान ने, तो वो आप ये पंखे को चला दें उसके बाद स्विच ऑफ भी कर लें तो क्या एकदम बंद हो जाता है? नहीं होता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। टाइम लगता है इसको बंद होने में। इंसान का नफ्स भी ऐसे, 11 महीने शैतान ने इसको ट्रेन किया है। अब क्या है, ये 1 महीना ये आपको उल्टा सीधा कुछ सिखाता ही रहेगा, और उसके बाद जब आप कुछ दुरुस्त होने लगेंगे तो और महीना ही ख़त्म हो जाएगा और शैतान फिर खुल जाएगा। तो इसके ऊपर काबू पाना है। आपको दिल करेगा कि मैं सो जाऊं, और ये कौन सा फ़र्ज़ है, ये कौन सा ऐसे है, हाँ बिल्कुल मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही, इसमें क्या बुराई है। बड़ी तावीलें आपको आपका नफ्स देगा। ऐसे वक्त के अंदर इंसान को रिमाइंडर चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होती है। ये हम इसी प्रोग्राम में यही करते हैं, आधे घंटे के प्रोग्राम में आपको यही बताया जाता है। ज़रूर ज्वाइन करें और रमज़ान को सोचें, या अल्लाह अभी से दुआ करें, या अल्लाह ये जो रमज़ान आने वाला है ना, या अल्लाह ताला इसको मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला रमज़ान बना देना, कि मेरी ज़िंदगी इसमें बदल जाए और मैं ऐसी बन जाऊँ कि जिससे तू राज़ी होता, और मेरी हस्ती वो हो जो जहन्नुम से आज़ादी पा चुकी है और मेरी बख्शिश हो चुकी है। ये दुआएं अभी से मांगें, इस पूरे महीने ये दुआएं मांगते रहें। ये अल्लाह ताला इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने की हमें तौफीक दे, क्योंकि वरना रमज़ान कई आते हैं और चले जाते हैं। आप देखते होंगे गुनाह वैसे ही चल रहे हैं, दुनिया वैसे ही चल रही है, रमज़ान का सूरज कोई अलग तो नहीं तलू होता, कोई अलग तो नहीं गुरूब होता, कोई दिन कुछ और तो नहीं नज़र आ रहा होता, ऐसा ही दिन होता है ना। दुनिया जो भी अपने काम धंधे या जो भी बुराइयां उसमें लगी हुई है, तो दिन तो ऐसा ही होगा, लेकिन बरकतें बहुत होंगी। ये ना हो कि हम इनसे महरूम रह जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रमज़ान की रहमतों से महरूम रहा वो असल महरूम है, वो बड़ा खसारे में। तो अल्लाह ताला इस महीने में फ़रिश्तों पर फ़ख्र करता है कि देखो फ़रिश्तों मेरे, देखो ये मेरे बंदों कैसे मुझे राज़ी करने के लिए ये दौड़ भाग कर रहे हैं, कितनी नेकियाँ करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस महीने को ज़ाया नहीं करना, इस महीने को अभी से ये प्लान करना है कि कैसे मैं अपने सारे काम समेट लूँ ये महीना आने से पहले। चाहे वो कुकिंग करनी है, चाहे वो कोई चीज़ें हाफ कुक करके रखनी है। मैं इसमें कभी भी किसी को नहीं कहती कि ये आप ना फ्रिज भरें, आप ज़रूर भरें फ्रिज, आप फ्रीज़र ज़रूर भरें, कि इस नीयत के साथ कि रमज़ान में मेरा टाइम ना वेस्ट हो, मैं अपना एक लम्हा भी वेस्ट नहीं करना चाहती, मेरा इतना कीमती टाइम आने वाला है, कैसे मैं उस वक्त क्या हंडी रोटी शुरू कर दूं, सारा सारा दिन वही करती रहूं। सादगी अपनाएं, इफ्तारी में सादगी अपनाएं। ज़रूरी नहीं 10 डिशें ही रखी होंगी तो हमारे मज़ा आएगा, लेकिन जो आपने बनाया उसको इस्तेमाल कर लें, ज़ाया ना करें, और अपने टाइम को ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए हर चीज़ वापस आ सकती है, गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। जो गुज़र गया पिछला रमज़ान वापस नहीं आएगा कभी, हम चाहे जितना भी चाहें उसको वापस लाना, कल का दिन नहीं वापस आ सकता, पिछला रमज़ान क्या आएगा। जो आप कर बैठे उसमें कर लिया, अब उसको बढ़ा नहीं सकते आप, मगर हाँ आने वाले रमज़ान में आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। एक सहाबी रसूल थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में क्या देखा है कि दो सहाबी जो एक साथ इस्लाम लेकर आए थे, एक साथ उन्होंने उसके बाद नेकियां की, बहुत कुछ किया, एक उनके अंदर जिहाद में गए और शहीद हो गए, और दूसरे उनके 1 साल के बाद फिर वो फौत हो गए अपने बिस्तर पे। लेकिन मैंने ख्वाब में ये देखा कि वो जो जिहाद में गए और शहीद हुए वो जन्नत में बाद में जा रहे हैं, और जो अपने बिस्तर पे फौत हुए वो पहले जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप तो सोचते ना शहीद का बहुत मकाम है, उनको तो पहले जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो बाद में फौत हुए क्या उनको 1 रमज़ान और नहीं मिला? क्या उनको इतनी सारी नमाज़ें और नहीं मिली, इतने सारे रोज़े और नहीं मिले? उनकी नेकियां कितनी बढ़ गई? तो जितने आपको रमज़ान मिल रहे हैं ना उतनी आपकी नेकियां बढ़ सकती हैं। यह खुशकिस्मती है जिसको ज़्यादा मिल जाए, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جس کو لمبی عمر ملے اور اس میں وہ نیکیاں کرے. تو شکر ادا کریں ہمیں اگر ایک اور رمضان کا موقع مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھانے کا چانس دے رہا ہے. دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے رہا ہے کہ اب بھی بس کرو, اللہ کی طرف پلٹو, اب بھی آ جاؤ, اپنے گناہ بخشوا لو. اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ اس نے دروازے کھول دیے ہیں اپنی رحمت کے, اور وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اوپر فخر کرتا ہے, آپ کی کوششوں کو دیکھتا ہے. کر ہم کچھ نہیں سکتے, لیکن آپ کی کوششوں کو وہ دیکھتا ہے, یہ کوشش میرا بندہ کتنی کر رہا ہے. تو اس میں کمی نہیں کرنی, جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنی آپ کی ہمت ہے. ایک بندہ اس کی ہمت زیادہ ہے, ایک کی کم ہے ہمت. جو جتنی ہمت رکھتا ہے وہ اس کے مطابق اپنا آپ لگا دے, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کی کوششوں کو. میں نے نمبر نہیں لگانے, ہم جب نمبر لگاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ سوال صحیح ہے تو اس کو ایک نمبر دے دیا, یہ غلط ہے اس کو زیرو نمبر دی. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دیکھتا, وہ دیکھ رہا ہے اس نے محنت کتنی کی ہے. تو آپ نے محنت کر کے دکھانی ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا جو عمرہ ہے اس کو اتنا بڑا ریوارڈ دیا کہ اس رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو توفیق ملے عمرے پہ جائیے. اس مہینے میں عمرہ کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا, آپ ویسے حج کرنے جاتے تو وہ حج ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں ہے. اس مہینے میں جو حج عمرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر اجر رکھتا ہے. تو اس مہینے کی بہت ساری برکتیں, میں نے آپ کو کہا نا خیر کثیر ہے اس میں, خیر کثیر. آپ ایک ڈالر خرچ کرتے ستر کے برابر اجر, اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب اجر دے دے آپ کو, آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو خرچ بھی کیجئے اس کے اندر, لوگوں کی خدمت بھی کیجئے, عبادت میں بھی دل لگائیے, راتوں کا قیام بھی کیجئے, روزہ بھی ایسا رکھیے جس میں زبان کا بھی روزہ ہو, صرف کھانے پینے کا نہیں کہ کھانا پینا نہیں کرنا چاہے زبان سے غیبت ہوتی رہے. غیبت تو حرام ہے, کھانا پینا تو حرام نہیں ہے, اس کو تو اللہ کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دیا اور حرام کر لیا. وہ جو حرام چیز ہے تو پہلے ہی حرام ہے, وہ اس کو کرتے رہیں گے کیا؟ جھوٹ حرام ہے, وہ کام نہیں کرنے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہوا. تو زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے کہ اس سے کوئی بھی ایسی غلط بات نہ ہو جائے, کیئرفل رہنا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سے اگر کوئی جھگڑا بھی کرے نا, کوئی لڑائی بھی کرنا شروع ہو جائے آپ سے, تو میں شروع ہو جائے, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ میں روزے سے ہوں. یعنی آپ کا یہ عذر کافی, میں روزے سے ہوں کہ آئی کانٹ فائٹ, میں آرگیو نہیں کر سکتی. بچے آرگیومنٹ کریں, میں روزے سے ہوں اور آپ بھی روزے سے ہوں, تو بیٹا فائٹ نہیں کرنی. تو اس چیز کو امپورٹنس دیں کہ یہ وہ مہینہ ہے, اپنے زبان سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.